का भी तय सिद्धांत सभी तैरते समय मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा।
ओम अज्ञान मीरांधशिखलाना दिनशलाख चक्षुर्मृतमी तस्मा श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित स्वयं रूप कदाम दधा सुधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवास गुरुर्व हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। आठवें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे जिसमें भगवान ने कुछ दो श्लोकों में अधिकतर आंसर दिए थे। जो प्रश्न पूछे थे उसमें ब्रह्म क्या है, अध्यात्म का क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और किस तरह से मनुष्य अभियज्ञ जो है वो कहाँ रहता है और उनको मृत्यु के समय पे कैसे याद किया जाए, इतने प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे आठ अध्याय की शुरुआत में। और भगवान ने तीसरे श्लोक से और चौथे श्लोक में दोनों श्लोकों में अधिकतर उत्तर दिए थे जिसमें ब्रह्म को कहा गया है जीवात्मा और परम ब्रह्म जो है वो है परमात्मा, अध्यात्म जो है जीव की प्रकृति को कहा गया है, कर्म जो है वो जो जीव का जो यात्रा है कर्म का चक्र के कारण अनेक अनेक जन्मों से जो परिणाम भुगत रहे हैं उस जर्नी को कर्म कहा गया है, अधिभूत इस भौतिक प्रकृति को कहा जाता है, अधिदैव भगवान की विराट रूप जो है उनको अधिदैव कहा जाता है और अधियज्ञ जो परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है सबके हृदय में वो अधियज्ञ है। और ऐसा व्यक्ति कहाँ, ये भगवान कहाँ रहता है, अधियज्ञ हृदय में रहता है। अब टेक्स्ट नंबर 5 से भगवान बताएंगे किस तरह से व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। टेक्स्ट नंबर 5
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं।
हाँ, ये आई थिंक केम भी है इसका अंतकाल चमा में, अंतकाल में जो व्यक्ति मेरा चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करता है वो व्यक्ति मेरे पास आता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये है जीवन की अंतिम परीक्षा। हम अनेक अनेक परीक्षाएं देते हैं लाइफ में लेकिन जो सबसे बड़ी कसौटी है लाइफ की वो है अंत समय में भगवान का चिंतन करना। हर एक व्यक्ति का ये, हर एक जो कृष्ण भावनामृत में जुड़ा है वो सबका ये उद्देश्य होता है या इच्छा होता है कि कृष्ण मैं आपको कम से कम मृत्यु के समय पे भूलू नहीं। इसके साथ दूसरा श्लोक इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसका सिद्धांत दूसरे श्लोक में बताया है तो उस पर भी पढ़ लिए, फिर दोनों साथ में चर्चा करते हैं।
हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।
यस, तो यह है सिद्धांत। पहले जो बताया भगवान ने कि मेरा चिंतन करो, ये सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन बाद में भगवान ने एक सिद्धांत बताया प्रिंसिपल कि नियम क्या है। नियम यह है कि जो व्यक्ति जिस भाव से शरीर त्याग करता है वो उस दूसरे जन्म में वो उसको प्राप्त करता है। जनरली पूरे लाइफ में हम जो करते हैं और रात के अंत समय में याद आता है या फिर वो दिखता है। कई बार आप पूरा समय रेलवे स्टेशन पे होते हो या ट्रेन में होते हो तो आंखें बंद करने से भी आपको ऐसा लगता है कि आप हिल रहे हो और आप पूरा दिन कोई एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ पर्टिकुलर कार्य कर रहे हो तो हो सकता है कि रात को स्वप्न में आपको वही चीज दिखे। तो इस तरह से पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं ये सारे कार्यों का हमारे हृदय के ऊपर एक इम्प्रेशन स्थिर हो जाता है और इतने सारे इम्प्रेशन का लेयर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, इतनी सारी इम्प्रेशन हमारे हृदय पर लग जाती है कि मृत्यु के समय पर ये सारा जन्मों से लेकर के अभी मृत्यु के समय तक जितना भी इम्प्रेशन इकट्ठा किया है वो सारी इम्प्रेशन आपके सामने एक रील की भांति, एक मूवी की भांति प्रकट होती है। और इसलिए अधिकतर समय देखा जाता है कि मृत्यु, किसी का देहांत होता है आपके पास में, करीब में, रिश्तेदार में, या किसी ऐसे व्यक्ति का देहांत होता है कि जो व्यक्ति से आपका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है, तो आपको विशेष करके मृत्यु के समय पे, उस व्यक्ति की मृत्यु के समय पे आपको उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं का चिंतन होता है, सारी उससे जुड़ी हुई सारी घटनाओं का स्मरण होता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं आपको याद आती है कि जो घटना आप प्राय भूल गए थे, लेकिन ऐसी घटना भी उस समय आपको याद आ जाती है। तो हमारे दूसरे के मृत्यु पर अगर हमारी ये स्थिति है, तो जब हमारी अपनी मृत्यु आती है तो हमारे लाइफ की सारी घटनाएं एक साथ प्रकट होती है, सारी घटनाएं, छोटी बड़ी सब घटनाएं जिसका हमारे हृदय का इम्प्रेशन लग गया है। तो ये घटनाओं का सम टोटल अंत में ये आता है कि आपको उस विचार से यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम, वो सोचते 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 उसका शरीर छोड़ता है। और नियम के अनुसार शरीर त्याग करते समय जिस चीज का आप चिंतन कर रहे हो ऐसा शरीर आपको दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। तो आपके सारे जीवन का जो कर्म का सम टोटल होता है उसके आधार पर आपको दूसरा शरीर मिलता है। और नियम इस तरह से काम करता है कि आपको मृत्यु के समय पर याद आता है वो सारी चीजें जो आप करते हो। अगर समझ लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मांस खाने का आदती है तो उसके लाइफ में जितना मांस खाए तो उसको मनुष्य बनने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको वो शेर बनना चाहिए या ऐसा कोई जंगली पशु बनना चाहिए। तो मृत्यु के समय पर उसको वही चीज बार बार याद आती है और इसके कारण उसको दूसरा शरीर इस तरह से। कोई व्यक्ति को कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, आजकल फैशन है कम कपड़ों का, तो कोई कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता तो मृत्यु के समय पर उसको वही सारी चीज बार बार याद आती है और परिणाम आता है कि उसको दूसरे जन्म में एक पेड़ बनना होता है, वृक्ष, वो वृक्ष बनता है, उसको कोई कपड़े की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है उसको, इसे ही भरत महाराज का एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद देते हैं कि हिरण में उनका मन जो है वो आसक्त हो गया था, हालांकि वो भक्ति के बड़ी उच्च श्रेणी तक पहुंचे थे, लेकिन एक छोटी सी गलती की उन्होंने। और वो गलती क्या थी, वो गलती भी बड़ी स्वाभाविक थी कि अगर कोई बच्चा असहाय अवस्था में छोटी सी आयु में जन्म लेने के साथ अगर उसकी माता का मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए और उसके आसपास उसका कोई है नहीं उसको संभालने वाला, तो ये वैष्णव का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है कि उसके हृदय में दया प्रकट होती है। दया तो ऐसे ही उसके हृदय में होती है, लेकिन ऐसी असहाय अवस्था में किसी को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रोटेक्शन की भावना होती है। यही भावना से भरत महाराज ने उस बच्चे को बचाने का प्रयास किया, हिरण के बच्चे को, लेकिन परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि वो हिरण के बच्चे को बचाने के चक्कर में उसी बच्चे में आसक्त हो गए। तो ये गलती हो गई इतनी उच्च अवस्था पर पहुंचने के पश्चात भी, और परिणाम मृत्यु के समय तो उनको हिरण का चिंतन हुआ। अगर कोई नारी पुरुष का चिंतन करते शरीर त्याग करते तो उसको दूसरे जन्म में पुरुष बन सकती है, तो कोई निरंतर पुरुष को स्त्री का चिंतन करते करते शरीर त्याग करता तो उसको स्त्री बन सकता है, या किसी भी शरीर का चिंतन करते करते वो शरीर त्याग करेगा तो उसको उसे वो चीज प्राप्त होती है। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से यहां पर कह देते हैं कि जो जिस भाव से चिंतन करता है, स्मरण करता है, उस भाव को प्राप्त करता है। कुछ लोग रखते हैं ना अपने घर में पेट्स, अमेरिका में तो बहुत बड़ी फैशन है, अमेरिका में आओ, यूरोप में आप जाओ तो वहां पर तो कुत्ते और बिल्ली रखते हैं पेट्स में, एंड दे आर वेरी हैप्पी, वेरी फॉन्ड ऑफ. इवन कई बार तो देखा जाता है दुर्भाग्य से कि हमारे भक्त लोग भी ऐसा रखते हैं, भक्तों के घर में भी ऐसे हमने पेट्स देखे हुए. तो इससे क्या होता है कि ठीक है, उनके पास कोई हमेशा कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता ही है आंसर देने के लिए, लेकिन वो 2-5 साल रहता है फिर मर जाता है, फिर दूसरा पेट लेके आते. लेकिन भगवान सेवा के लिए आपके पास है, वैष्णव है, पूरा संसार है सेवा करने के लिए, लेकिन आप अपना आसक्ति रखते हो इन पालतू प्राणियों के अंदर. तो ये एक प्रकार का रिस्क है. केवल पालतू प्राणी ही नहीं, लाइफ में किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपके बेटा बेटी क्यों ना हो, ये आसक्ति कभी भी श्रेयकर नहीं हो सकती. इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी, जब कोई भक्त किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति अत्याधिक आसक्त हो जाता है, तो भगवान उस आसक्ति को बुरी तरह से तोड़ करके फेंक देते हैं. और उस समय झटका लगता है भक्त को कि वो बड़ा आसक्त था, उसको झटका लगता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण का कृपा उसके पास होता है तो संभल लेता है. यमुनाचार्य का पत्नी जो थी उसका देहांत हो गया था, और बच्ची जो थी वो छोटी थी, और उनका इच्छा था संन्यास लेने का. तो वो सोच रहे थे, राजगुरु थे, क्या करे क्या करे, छोटी बच्ची है तो संन्यास तो नहीं ले सकते, जब तक बच्ची बड़ी नहीं होती उसको जब तक विवाह नहीं कराते किसी का, किसी के साथ शादी, उसका वो जिम्मेदारी है ना पिता की, अगर वो नहीं करा दे तो कैसे, वो कैसे संन्यास ले सकते. तो ये सोच रहे थे, उतने में एक छिपकली ऊपर से गिरी, और वो छिपकली का बच्चा जन्म हुआ, और जो मदर थी उसकी वो वहीं पर मर गई, और जो बच्चा था उसको कुछ नहीं पता. वो तो वो मरने के बाद उसके पास जो कुछ लिक्विड था उसमें कई सारे कीटाणु अट्रैक्ट होकर के फंस गए, और वहीं से उसका भोजन शुरू हो गया, वहीं से उसने भोजन करना शुरू किया. ये सारा दृश्य यमुनाचार्य देख रहे थे, और यमुनाचार्य ने सोचा कि अगर भगवान एक छिपकली का बच्चे का भोजन का व्यवस्था कर सकते हैं और उसका तो कोई नहीं है, तो मैं क्या हूं पागल की तरह ये सोच रहा हूं कि जब तक मेरी बच्ची बड़ी नहीं होती और उसका विवाह नहीं होता तब तक मैं संन्यास नहीं ले सकता. उस दिन उन्होंने सोच लिया कि पालन करने वाले एक ही व्यक्ति है. कौन है पालन करने वाला? भगवान है ना, कृष्ण, वो पालन करने वाला. तो इसलिए तब जाके राजा को विनती की कि मेरा इच्छा है संन्यास लेने के लिए, लेकिन मेरी बेटी छोटी है और वो जब तक बड़ी नहीं होती उसका पालन लालन पालन कैसे होगा, इस विषय का चिंता मेरे मन में है. राजा उनका शिष्य था, तो राजा ने कहा कि इस विषय का चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो मेरी बेटी जैसी है, तो वो मेरी अन्य जो प्रिंसेस है, राजकुमारियां हैं, उनके साथ ही बड़ी होगी, उनके साथ रहेगी, और उसका सारा दायित्व तो मैं अपने सिर पे लेता हूं. तो हो गया व्यवस्था, भगवान ने तुरंत व्यवस्था कर दिया. लेकिन बात व्यवस्था की नहीं है, बात श्रद्धा की है. जो यमुनाचार्य की श्रद्धा थी वो श्रद्धा भक्तों में थी, इसलिए अंतकाल में जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करेगा वही व्यक्ति वास्तव में समझ पाएगा अपने लक्ष्य को या प्राप्त करेगा. इसलिए अंतकाल बड़ा मुश्किल है. प्रभुपाद लेक्चर में बता रहे थे कि निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए. अब निरंतर भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो कोई कई बार प्रश्न होता है कि काम करते करते तो कैसे भगवान का चिंतन, वर्क आवर्स जो होते हैं ऑफिस में तो उसमें भगवान का चिंतन कैसे हो पाएगा. अरे भाई, आप वर्क आवर्स में भगवान का चिंतन नहीं कर सकते तो मृत्यु के समय पे कैसे कर पाओगे. वर्कआउट में तो एकदम ऐसी कंफर्टेबल रूम होती है, कैबिन होती है, यू नो, और आपको आपको सारी सुविधाएं, आप जब चाहो खा सकते हो, जब चाहो पी सकते हो पानी, और कंफर्टेबल सीट होती है, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, राइट। और मृत्यु के समय पे कैसी सिचुएशन होती है उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 10,000 स्कॉर्पियन एक साथ अगर आपको काट रहे हो, एक मच्छर काटने पर आप परेशान हो जाते, एक मच्छर काटने पर, और यहां पर 10,000 स्कॉर्पियन बिच्छू बोलते, क्या बोलते, बिच्छू, वो काटते हैं, इतना पीड़ा होता है, कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, छोटा मोटा कष्ट हमारा तो कुछ भी नहीं है, मृत्यु के समय पे इतना बड़ा कष्ट होता है। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसोलिनस जयप्रता का महाराज का लीवर ट्रांसप्लांट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो ट्रांसप्लांट करने के पश्चात उनको पहले से ही बोला गया था कि ये पेनफुल होगा लीवर ट्रांसप्लांट, तो महाराज जयप्रता का महाराज के विषय में था, वो हाथ पांव जमीन ये बिस्तर पर हाथ पांव जोर जोर से पटकते थे, इतना पेन होता था उनको जब लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तब उनके इतना पेन, अनबेरेबल पेन, और उन्होंने फिर कहा कि पूरी लाइफ में मैंने इतना पेन नहीं देखा जितना पेन अभी देख रहा हूं। ये तो केवल लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, लेकिन मृत्यु के समय पे कैसा पेन होता है, कांट इमेजिन। इसलिए कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु मे मानसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्थे। प्रभुपाद कहते हैं, कुलशेखर महाराज की प्रार्थना है, प्रभुपाद को पसंद था यह श्लोक, तो प्रभुपाद बार बार इस श्लोक का उच्चारण करते थे कभी कभी, और इसका अर्थ क्या है कि हे कृष्णा, अभी मेरा मन जो है वो आपके चरणों में स्थिर है, इसलिए मेरा मृत्यु अभी हो जाए, इसी समय हो जाए, क्योंकि जब प्राण का विसर्जन करने का जब समय आएगा उस समय मेरा गला जो है वो कफवात और पित्त से रुन जाएगा, और कैसी सिचुएशन हो जाएगी, कंठावरोधन, बोल नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसा हो जाएगा। कभी देखा है किसी मरते हुए व्यक्ति को, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, वो उसका कंठ रुक गया है, उसका पूरा सिस्टम बिगड़ गया है बॉडी का, एक एक कोने में से प्राण विसर्जन हो रहा है शरीर के एक एक कोने में से, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं शरीर के एक एक अंग को हथौड़ा मार मार करके पीसा जा रहा है, एक एक अंग को, ऐसा भयानक कष्ट होता है, और ऐसे कष्ट के बीच में आपको भगवान का चिंतन करना है, ये बहुत मुश्किल होता है। स्मरणम कुतस्थे, मैं कैसे आपका चिंतन करूंगा, क्योंकि अंत नारायण स्मृति, नारायण का जो स्मृति अंत में अगर होता है तभी जन्म सफल माना जाता है। अजामिल के केस में ऐसा देखा गया था कि उसका नारायण नाम का बच्चा था, इसलिए वो बच गया क्योंकि नारायण का उच्चारण उसने कर लिया, वो भी गलती से किया था, इंटेंशनली नहीं किया था, अनइंटेंशनल किया था, लेकिन फिर भी अंत समय में उन्होंने प्रयास ये नाम उच्चारण किया तो बच गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का इम्प्रेशन उसके हार्ट में बहुत गहरा है भौतिक वस्तुओं का, इसलिए हम लोग कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी आप इस्कॉन में सिनेमा क्यों बंद करवाते, थिएटर मूवीज वगैरह सब क्यों बंद करवाते, क्यों मना करते हैं? तो उसके तो अनेक कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो आपको कृष्ण को भुला देता है, यहां पर वो सारी चीजें आपके हृदय पर छप जाती है इम्प्रेशन के रूप में, हालांकि वो रजोगुण तमोगुण से भरा होता है, लेकिन वो आपके हृदय पर छप जाती है उसका इम्प्रेशन। जो चीज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जो चीज आप बिलबोर्ड्स पे देखते हो, जो चीज आप सुनते हो लोगों से, ये सारी चीज आपके हृदय पर अंकित हो जाती है। इसलिए कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, निरंतर निरंतर हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो क्या होगा कि हमारे हृदय पर गहरी इम्प्रेशन लगेगी, गहरा इम्प्रेशन लगेगा। अर्चा विग्रह की उपासना करते भक्त लोग नवदा भक्ति में जुटते हैं, तो इस तरह से निरंतर भगवान को चिंतन करने से हमारे हृदय पर उसका जो 16 माला का जप, ये 16 माला जप करते समय अगर मन को वश में रखने का बोला जाता है, राइट, 16 माला जप करते समय आपको मन भगवान के चरणों में स्थिर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस का टाइम है, वो एक डेढ़ दो घंटा जो टाइम है वो प्रैक्टिस वाला टाइम है, वो प्रैक्टिस होती है जैसे भगवान का ध्यान करने में चिंतन करने में, वही प्रैक्टिस आपके हृदय पर इम्प्रेशन क्रिएट करती है कृष्ण की, कथा सुनना इत्यादि वो इम्प्रेशन क्रिएट करती है, और बार 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 कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, इसलिए अंतकाल में कृष्ण का स्मरण अपने आप हो जाता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम निरंतर कृष्ण भावनावृत में स्थिर रहे। अगर कोई भक्त किसी कारण से पूरा जीवन उसने भगवान के चरण में समर्पित किया हुआ है और उसने निरंतर भगवान की सेवा में ही लगा है, लेकिन किसी कारण से मृत्यु के समय पर भगवान को याद करना भूल गया, एक्चुअली भूल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी मृत्यु ही इस अवस्था में हुई कि वो भगवान का चिंतन ही नहीं कर सकता है, तो क्या होगा? तो क्या ये नियम के अनुसार उसको भगवान के धाम में नहीं जाने दिया जाएगा? लेकिन कहते कि नहीं, कृष्ण मूर्ख नहीं है, कृष्ण ऐसा नहीं है कि वो हर एक छोटी चीज में नियम खोल करके पढ़ाते, भगवान भाव को जानते हैं। इसलिए अगर कोई भक्त अगर लाइफ में पूरा सेवा किया है और अंत समय में अगर भूल भी जाए तभी भी भगवान उसको ग्रेस मार्क दे देते और उसको अपने पास वापस ले लेते। तो इस तरह से ये दोनों सिद्धांत बताया गया है, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से निरंतर भगवान के शरण में चिंतन में लगा है तो उसकी मृत्यु बड़ी शुभ होती है। उसकी मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते, उसकी मृत्यु को गति कहते हैं। वो व्यक्ति मर नहीं जाता है, जैसे परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं हुई थी। परीक्षित महाराज को श्राप था कि 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग आकर के उनको डंस मारेगा और उनका प्राण हर लेगा, तो ये तो निश्चित था, ये होने ही वाला है, ये स्पष्ट था। लेकिन तक्षक नाग के साथ परीक्षित महाराज की मृत्यु भी तो आई थी, किंतु परीक्षित महाराज महाभागवत भक्त बने थे शुभदेव गोस्वामी की कृपा से, और उन्होंने श्रीमद भागवत का श्रवण किया था निरंतर, तो जब उनकी मृत्यु का समय आया था तक्षक नाग भी आया था और मृत्यु भी आई थी, लेकिन मृत्यु उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रह गई परीक्षित महाराज के सामने, और परीक्षित महाराज ने मृत्यु के सिर पर पांव रख करके भगवान के धाम में गए, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके। मृत्यु के समय पे बहुत कष्ट होता है, लेकिन जो भक्त शरीर त्याग करके भगवान के धाम जाता है उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का कष्ट भगवान छीन लेते हैं। इसलिए भक्तों की मृत्यु और साधारण व्यक्ति की मृत्यु में बहुत बड़ा अंतर होता है। आगे फिर भगवान कहते हैं कि कृष्ण को बड़ी अच्छी बात अर्जुन ने सुना होगा, तो अर्जुन तो बहुत खुश हो गया होगा, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहे, कृष्ण का चिंतन करो, ये काम तो मैं बड़ा आसानी से कर सकता हूँ, बचपन से यही तो करता आया हूँ कृष्ण का चिंतन करना, तो चिंतन करने वाली बात तो हजम हो जाती है, तो फाइट वाला काम खत्म कर दे, फाइट नहीं करेगा तो चलेगा। लेकिन भगवान बोलते नहीं, फाइट तो करना ही पड़ेगा, कृष्ण मेरा चिंतन करना है लेकिन फाइट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट श्लोक को पढ़िए।
अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
यस, तो यहाँ पर क्या है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। माम सर्वेषु कालेषु का अर्थ होता है निरंतर, हमेशा, फॉर ऑल टाइम। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, यह इंटरेस्टिंग है, मेरा चिंतन करो और युद्ध करो। कृष्ण सिलेक्टेड द सिक्वेंस, युद्धे च माम अनुस्मर नीलकंठ, उन्होंने पहले कहा पहला मेरा चिंतन करो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चिंतन कर सकता हूँ या तो युद्ध कर सकता हूँ, है ना। बहुत कई बार कुछ वक्त आते हमारे पास, वो कहते हैं कि प्रभु जी मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट है मुझे सेवा करने में, बड़ा अच्छा लगता है प्रभु, लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? मैं मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल नहीं निभाऊंगा, मैं ना अर्निंग करूंगा, ना फैमिली रन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये कर सकता हूं। तो फिर हम उनको कहते हैं कि नहीं, वो भी करना पड़ता है, आप ये सब छोड़ के नहीं जा सकते, जब तक आपका पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो आप, हम क्या कहते हैं उनको, शुरू शुरू में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करो और साथ साथ में कृष्ण चिंतन भी करो। फिर क्या होता है, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके चला जाता है, ना भक्ति करता है, ना चिंतन करता है, कुछ नहीं करता। और जब आप उसको पूछो कि आप ऐसा क्यों किया, तो क्या कहेगा, या तो माम अनुस्मर हो सकता है या तो युद्ध हो सकता है, मैं दो में से कोई एक ही कर सकता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन भगवान इस बात को यहां पर तिरस्कार करते हैं, भगवान मना किए। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है माम अनुस्मर युद्ध, दोनों है, बोथ एंड है, और नहीं है, यहां पर एंड सब दोनों करना है, और विशेष करके मेरा चिंतन करो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि युद्ध करना ये तो एक संबंधित कर्तव्य, परोक्ष, एक रिलेटेड कर्तव्य है, लेकिन प्राइमरी कर्तव्य है माम अनुस्मर। किसी के लिए युद्ध करना कर्तव्य है, किसी के लिए युद्ध नहीं करना कर्तव्य है, किसी के लिए भोजन बना कर खाना कर्तव्य है, किसी के लिए नहीं खाना कर्तव्य है। लेकिन ये सारे कर्तव्य तो व्यक्ति व्यक्ति से अलग हो सकते हैं, लेकिन माम अनुस्मर जो है वो सबके लिए समान है, वो कॉमन है। इसलिए मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, यही भगवान का उद्देश्य, संदेश है मेरा। क्या आगे नेक्स्ट लाइन में है, ऐसा करने पर डेडिकेटेड योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी एंड योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। आप निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सो इन नेक्स्ट श्लोक में भगवान अपने अपने पर जो अपना जो चिंतन है कृष्णा, तो वो चिंतन के ऊपर फिर से बल देते हैं। वो पढ़िए टेक्स्ट नंबर 8 में।
हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है।
यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। अनन्य गामी नाम, क्या है श्लोक? अभ्यास योग युक्त। श्लोक पढ़िए, अभ्यास योग युक्त है ना,
योग युक्त है ना, चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम।
तो अनन्य गामिना, अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से अनन्य गामिना, अनन्य गामिना का अर्थ होता है और कुछ भी नहीं, अनन्य, नथिंग एल्स, ऑलवेज मेडिटेशन में सुप्रीम पर्सन गॉड इज माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज इन रिमेम्बरिंग, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, अनन्य गामे, अनडिविएटेड फ्रॉम द पाथ, ही कैन, ही इज श्योर टू विश मी। तो यहां पर भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं अनन्य गामिना, अनन्य शब्द दो बार, दो तीन बार आता है इस अध्याय में, लेकिन यह अनन्य शब्द का अर्थ होता है कि केवल मुझे और कुछ नहीं। भगवान कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं कि आप मेरा चिंतन कर सकते हो या फिर आप शिवजी का भी कर सकते हो या फिर आप नारद का भी कर सकते हो, ब्रह्मा जी का कर सकते हो, इंद्रचंद्र नहीं, कुछ नहीं। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केवल मेरा ही चिंतन करना है और यही सारे वेद शास्त्रों का सार है, यही सार, क्योंकि यही भगवान भगवद्गीता के 9वें अध्याय में भी बताते हैं, 18वें अध्याय में भी बताते हैं, बार बार इस चीज को बताते हैं कि मन को मुझ में निरंतर लगा के रखो। थिंकिंग ऑफ कृष्ण, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातु जी। निरंतर भगवान का चिंतन करना और कभी उनको भूलना नहीं, यही जो विधि निषेध है मुख्य। बाकी सारे नियम जो है, जितने भी नियम है, वो सारे नियम इसके दास है, सारे किंकर है उनके। मुख्य नियम यही है कि कृष्ण को निरंतर स्मरण रखो और कृष्ण को कभी भूलो नहीं। ये दो चीज अगर इस हमारे प्राय हरि भक्ति विलास में साधन भक्ति को लेकर के अनेक अनेक नियम बताए गए हैं, लेकिन ये सारे नियम जो है उसका जो मूल प्रयोजन है वो है क्या, कृष्ण को चिंतन करना है हमेशा, कृष्ण को कभी भूलना नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो कोई व्यक्ति इस तरह से निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है, बार 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 चिंतन करता है, कृष्ण के चिंतन में विशेष करके उनके कथा श्रवण में, उनके गुण श्रवण से उनका चिंतन हो सकता है आसानी से। तो ये चिंतन का इतना प्रभाव है कि वो हमारी जो बद्ध प्रकृति है उससे हमें मुक्त करा देता है। भगवान के चिंतन का इतना शक्ति होता है। जनरली हम सभी अलग अलग शक्ति रखते हैं, अलग अलग हमारी वीकनेसेस है। कोई व्यक्ति किसी एक चीज में बहुत कमजोर होता है लेकिन दूसरे चीज में अच्छा होता है, लेकिन वही चीज में दूसरा व्यक्ति जो होता है बड़ा कमजोर होता है। हमारे कई आसक्तियां होती है, हम कई अच्छे गुण होता है लेकिन किसी दो तीन चीज के अंदर आसक्त होती है हमारी, उसमें फंस गया हूं ऐसे। बाकी सब अच्छा है, भगवान की सेवा भी अच्छे से कर रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन वो एक दो चार चीज ऐसी है कि जिसमें से मन हट नहीं रहा है, उसमें आसक्त है। तो कुछ आसक्तियां, कुछ हमारी गलतियां भी है, मिसगिविंग्स। तो सबका अपना अपना लिमिटेशंस है, सबका, हर एक व्यक्ति का। कोई आसक्त है, कोई अनासक्त है, कोई गलतियां करता है, कोई कमजोर है, कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग तीन गुणों के प्रभाव के संग से हम अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, लेकिन हमारी ये सारी कमियां जो है वो कृष्ण चिंतन से मुक्त हो जाती है। बहुत त्रुटियां हमें, लेकिन सारी त्रुटियां जो है वो हम हमारे सारे लिमिटेशंस को कृष्ण की कृपा से उनका चिंतन करके इसको दूर कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम धनवान, कोई गरीब है, कोई कम बुद्धिशाली, कोई ज्यादा बुद्धिशाली, कोई ज्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, लेकिन कृष्ण चिंतन करने वाला व्यक्ति इस सारी लिमिटेशंस को पार कर जाता है। इसलिए कई बार कहा जाता है ना, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं कृष्ण के चिंतन से, जो आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये केवल कृष्ण का चिंतन करने से आप इसको पार कर सकते हो। बड़े से बड़ा भय भी छोटा हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। कृष्ण के चिंतन बजा हुए मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदर है। हे कृष्ण, हे मेरे मन, तुम श्री नंदनंदन अर्थात कृष्ण के अभय चरण जो है, भगवान के चरण जो अभय देने वाले, उसका चिंतन करो, जिससे तुम्हारा सब भय, सब तुम्हारी जो कमियां है, सब जो प्रॉब्लम्स है, सब कुछ साफ हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट जस्ट बाय थिंकिंग। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करो। व्हाई इज एम्फसाइजिंग सो मच? बिकॉज दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, एंड इट्स सो इजी, जस्ट एंगेज योर माइंड, रिमेम्बरिंग कृष्णा, दैट्स इट। That is that easy. Of course, it may not be that easy in the beginning, but if you practice, it's easy. इसलिए अभी भगवान नेक्स्ट श्लोक में कैसे भगवान का चिंतन किया जा सकता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं भगवान के अपने ही क्वालिटीज पढ़िए।
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लगकर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भाई तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है दिव्य रूप है।
यस, तो यहाँ पर बहुत सारी 10 तरीके बताए शायद आप काउंट कर सकते हो कितना 10 है क्या बस तरीके है। तो पहला बताइए कवि
सर्वज्ञ
सब जानते हैं भगवान भगवान सब जानते हैं भूत जानते हैं वर्तमान जानते हैं भविष्य जानते हैं और सबके हृदय के परमात्मा के रूप में बैठते हैं इसलिए उनको हर एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। इतना पूर्ण ज्ञान होता है कि जितना आप नहीं समझ सकते उतना वो समझ सकते अपने आप को। आप एक्चुअली क्या सोच रहे हो और आप आपके हृदय में कौन सी इच्छा निवास करती है वो इच्छाओं का प्रॉपर रिपोर्ट वो उनके पास है हमारे पास नहीं है। ही नोज बेटर सो ये सब कुछ जानते हैं। तो ये 10 तरीके हैं अलग अलग इसमें से एक तरीका है कि भगवान इस तरह से सब जानते सर्वज्ञ है सब कुछ जानते। दूसरा है पुरातन वो इतने पुराने हैं कि ब्रह्मा जी इत्यादि भी कई हजारों लाखों करोड़ ब्रह्मा उनके पास आकर के चले गए जन्म लिया मर गए लेकिन वो इन सारी सृष्टि की शुरुआत से फिर भी विद्यमान है। फिर तीसरा
नियंता कंट्रोलर
कंट्रोलर तो भगवान हर एक वस्तु को कंट्रोल रखते हैं यहाँ तक कि सृष्टि का सर्जन से लेकर के विसर्जन का सारा कार्य उन्हीं के इशारे होता है। वही अपना एक्सपांशन करते हैं अलग अलग स्वरूपों में और वही पूरा सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। सृष्टि को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हम सबको भी कंट्रोल करता है। फिर
लघुतम से भी लघुतर मीन स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट भगवान इतने स्मॉल है कि वो आत्मा के हृदय में रहते हैं। आप सोचिए वह आत्मा जो है उसका साइज क्या है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर इतना सूक्ष्म है कि उसका आप देख भी नहीं सकते सो यू नो माइक्रोस्कोप की उसको देख नहीं पाएगा इतना छोटा है। उसके हृदय में जाकर के भगवान रहते हैं दैट्स व्हाई इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट राइट और मेंटेनर व्हाट इज इट सबका पालन करने वाले भगवान जैसे हमें भी कुछ समय पहले हम बता रहे थे पालन करने वाले भगवान है हम कौन होते पालन करने वाले और वो पालन हर का जो जिम्मेदारी है वो भगवान के पास ही ठीक है हम ये कर भी नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी नहीं कर सकते ये कार्य शिव जी नहीं कर सकते ये कार्य इसलिए विष्णु कार्य कर रहे हैं पालन का काम तीनों जो अवतार है भगवान के गुणावतार ये पालन करते हैं। तो पालन करने का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है इसलिए कभी भी भगवान का ये स्थान लेने का प्रयास मत करो कभी भी ये सोचने का गलती मत करो कि मैं पालन करने वाला हूं। अधिकतर ये समस्या तब जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति का पूरा फैमिली उस पर निर्भर करता है उसका बच्चा उसका बेटा बेटी उसकी पत्नी उसके जो भी सारे उस व्यक्ति पर निर्भर करते उसके धन कमाने से तो हो सकता है वो व्यक्ति ये सोचने लगे कि पालन करने वाला तो मैं हूं मैं ही धन कमाता हूं मैं ही घर चलाता हूं लेकिन वास्तव में ये कार्य कौन करता है भगवान करते हैं। हम तो केवल कठपुतली की तरह उनके इशारे पर नाच रहे। फिर अचिंत्य है भगवान दिव्य है अचिंत्य है दिव्य है इतना भगवान में कोई भौतिक दोष नहीं है और भगवान अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ होता है कि आप अपनी बुद्धि से उनको सोच ही नहीं सकते अचिंत्य का शब्द का अर्थ होता है इनकंसीवेबल, अकल्पनीय। आप प्रयास करोगे, कितना भी प्रयास करोगे कि कृष्ण क्या सोचते होंगे, कृष्ण कैसे लगते होंगे, उनके उनके शरीर में से कैसी खुशबू आती होगी, वो छूने में कितने सॉफ्ट होंगे और उनका किस तरह से ये सृष्टि को संभालते हैं, किस तरह से उनके उनके लोक में ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है, क्योंकि काल का तो प्रभाव ही नहीं है उनके धाम में, तो भूत वर्तमान भविष्य का तो प्रभाव ही नहीं हो सकता वहां पर, वहां पर सब कुछ वर्तमान में ही रहता है, तो ये सब कैसे हो सकता है? कांट इमेजिन, इसको आप समझ ही नहीं सकते कि वहां पर कैसा है, वो तो केवल वही व्यक्ति बता सकता है जो वहां पर रहने वाला हो। हाँ, और इधर आकर बता सकते हैं। एक बार प्रभुपाद हवाई बीच पर चल रहे थे, वॉक कर रहे थे या कुर्सी लगाकर बैठे थे बीच के पास, तो वहां पर हवा आ रही थी ठंडी, तो प्रभुपाद ने ऐसे ही बोल दिया, वो हवा आ रही थी, प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली लाइक वैकुंठ, वैकुंठ में इसी तरह से हवा आती है ठंडी। हवा का अर्थ क्या होता है? जनरली हवा तो आप ऐसे भी समुद्र के पास जाते तो हवा आती है, राइट? लेकिन यू नो प्रभुपाद ने जब बताया ऐसे, तो डिवोटीज वर थिंकिंग, प्रभुपाद हाउ डू यू नो, कैसे आप जानते हो? ऐसे एक बार नहीं, ऐसे कई बार हुआ, कई जगह प्रभुपाद ने इस तरह से कहा कि गोलोक वृंदावन में ऐसा ही है, वैकुंठ में ऐसा है। ऑफकोर्स इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी फिर ऐसा अनुमान करना शुरू कर दे, यू नो, कि गोलोक वृंदावन में ऐसा हो गया, डोंट कॉन्कॉक्ट, अचिंत्य वस्तु है, इसका आप कॉन्कॉक्शन मत करो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये हमारी सोचने की शक्ति से ही पर है। इसलिए कई बार अगर हमारी सोच आप सहाय नहीं करती, यू नो, कई बार कुछ भक्त प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न उसका उत्तर देंगे, हम शास्त्र के आधार से उसको उत्तर भी देते हैं, फिर भी उसके दिमाग में वो बात उतरती नहीं है, वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते जाते हैं, और उसको हम पूरा प्रयास करते हैं, शास्त्र का पूरा आधार बताते, ये बताते, लेकिन क्योंकि वो अचिंत्य वस्तु है, इसको शब्द से कैसे भी आप बयान कर सकते हो? अचिंत्य वस्तु, एक बार कुछ ने किसी कोई प्रभुपाद को ऐसा प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा कि व्हेन यू गो देयर देन यू सी दैट, डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस।
प्रभु जी उसका अगर उदाहरण भी देंगे तो भौतिक जगत का उदाहरण देके बोलेंगे,
क्योंकि उसका उसके अलावा हमारा कोई अनुभव ही नहीं है,
तो जब भौतिक जगत का उदाहरण देंगे तो
वो लिमिटेड हो जाता है। भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज हुई है ही नहीं कि जिसके आध्यात्मिक जगत के साथ तुलना की जाए, उदाहरण फिर भी आचार्य लोग, शास्त्र, भगवान स्वयं भी ये उदाहरण भौतिक जगत का देते हैं, जो क्लोज से क्लोज जो होता है वो एग्जांपल देते हैं ताकि हम समझ सके हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, कि हम भौतिक चीजों से प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं और आध्यात्मिक विश्व का हमारे पास कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। इसलिए माया क्या करती है? माया कहती है आपके पास आकर के, देखो मेरे पास तो गारंटी है कि इतना करोगे तो इतना सुख मिलने ही वाला है, गारंटी है, और इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मैं तुम्हें करवा सकती हूँ प्रत्यक्ष, लेकिन तुम्हारे कृष्ण के पास क्या है, क्या गारंटी, क्या प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हारे पास है? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरी बात मान लो, कृष्ण की बात मत मानो। और अधिकतर ये समस्या होती है कि हम लोग क्यों आकर्षित रहते हैं माया के पास, क्योंकि हमें वो चीज ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में होती है, वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। हाँ, इसलिए हम इसको, इस पर विश्वास करना आसान है, लेकिन कृष्ण के विषय में, कृष्ण के धाम के विषय में, जहां पर निरंतर सुख है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, वो सुनना पड़ता है, सुनने से आपको विश्वास करना पड़ता है कि हाँ ऐसा होगा, शास्त्र कहते हैं हाँ वहां पर कसौटी है, यही हमारी कसौटी है, इसलिए हम माया से आकर्षित रहते हैं और भगवान से आकर्षित नहीं हो पाते। सो लेकिन भगवान अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से पर है, इसलिए जितना अधिक हम उनके विषय में सुनेंगे उतना अधिक हम उनके विषय में समझ पाएंगे। इसलिए हियरिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे के श्लोकों में भगवान योग मिश्र भक्ति का वर्णन करते हैं। अभी तक पहले कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र भक्ति का बात हुआ था आगे के चैप्टर्स में। अभी यहाँ पर भगवान योग मिश्र भक्ति की बात कर रहे हैं। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 10।
समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बहु के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है।
यहाँ पर कहा है कि लाइफ एयर को, प्राण वायु को दो भ्रमरों के बीच में, क्या आईब्रोस, पांवों के बीच में स्थिर करता है। और अंत में क्या, ये अनुवाद का मुख्य सारांश क्या है, चिंतन
परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता
है। हाँ, तो जब भी योग की बात होती है अगर वो भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो योग भी आपको उसका पूरा फल नहीं दे सकता। यहाँ पर योग मिश्र भक्ति में ऐसे अलग अलग चक्र होते हैं, बहुत सारे चक्र, किन 7 चक्र होते हैं ना,
6
चक्र होते हैं, 6 चक्र होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा चक्र, सबसे ऊपर जो होता है, कौन सा होता है, सहस्त्र, और यहाँ पर क्या होता है,
आज्ञा
चक्र। तो यहाँ पर ये इस श्लोक में बताया गया है दो भावों के बीच में आज्ञा चक्र, उस पर अपने प्राण को स्थिर करता है। तो ये सारे चक्रों का जो सिस्टम है वो योग का सिस्टम है। प्राण वायु नाभि में स्थिर होता है, हर एक व्यक्ति का जो प्राण वायु होता है वो नाभि में स्थिर होता है, क्योंकि वहीं से जन्म प्राप्त होता है, माता के साथ जुड़ते हैं वहीं से जन्म होता है। बच्चे का शरीर में प्राण का स्थापना वही नाभि से होता है और वहां पर प्राण वायु रहता है और प्राण वायु को ऊर्ध्व गति दी जाती है ये योगिक विधियों के माध्यम से। और ये प्राण वायु को ऊर्ध्व गति देने से वो प्राण वायु धीरे धीरे इस आज्ञा चक्र में स्थिर होता है और फिर वो भगवान का निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करता है। तो परिणाम ये आता है कि वो अंत में भगवान के पास पहुंच सकता है। तो ये अष्टांग योग को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग इसके माध्यम से जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आगे अभी अष्टांग योग में 8 चीज होती है, छठे अध्याय में हमने चर्चा की थी, तो भगवान इसको संक्षिप्त में 2-3 श्लोक में समरी के रूप में बताएंगे। पढ़िए श्लोक।
जो वेदों के ज्ञाता है और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है।
तो अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि जो वेदों को जानने वाला है और ओमकार का उच्चारण करता है और जो संन्यास आश्रम में स्थिर है अर्थात ब्रह्मचर्य का जो चुस्त पालन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है अर्थात योग के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा किस तरह से हो सकता है, जनरली यहाँ पर ब्रह्मचर्य का दूसरी भगवान ने बताया डिजायरिंग सच परफेक्शन वन प्रैक्टिस सेलिबसी। तो ये यम नियम आसन इत्यादि वो पालन करते हुए ब्रह्मचर्य इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग में अगर कोई शुरुआत भी करना चाहता है अष्टांग योग की तो सबसे पहले उसको एकांत स्थान चाहिए, एकांत स्थान चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये ब्रह्मचर्य का पालन कई जगह होता है, अष्टांग योग में होता है, आयुर्वेद में अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है एज पर द रूल आयुर्वेद में, तभी वो ट्रीटमेंट इफेक्ट करती है, नहीं तो इफेक्ट नहीं करती जो वैदिक दृष्टि से होती है वो। मैं साउथ इंडिया गया था तो पहले ही दिन मुझे बताया गया था कि अगर आपको इसका पूरा लाभ चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तभी वो उसका पूरा इफेक्ट आ सकता है। So brahmacharya is very important. Now Krishna is giving further, you know, yoga ka jo stage hai uska vishay mein aage bata de padiye.
समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है।
हाँ, तो यहाँ पर वही चीज बताई जो अष्टांग योग में बताई थी, वही चीज, इंद्रियों को विड्रॉ करना ऑब्जेक्ट से, जैसे वापिस लेना, द्वारों को बंद करना, अर्थात आंख से अगर देखने का देखना ऑब्जेक्ट है और इंद्रियां जो है वो देखती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो वहां से उसको इंद्रियों को वापस लेना, विड्रॉ करना इंद्रियों को सारे ऑब्जेक्ट से, आंखों को देखने से बंद करना, कान को सुनने से बंद करना, मुंह को बोलने से बंद करना, इस तरह से सारी इंद्रियों को प्रत्याहार का अर्थ होता है विड्रॉ करना, वापिस लेना, सारी इंद्रियों को वापिस लेना अपने अपने कार्य क्षेत्र से, सबको वापस लेकर के स्थिर करने के स्थान पर, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। तो ये कार्य ये योग के माध्यम से व्यक्ति कर सकता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में समाधि की बात होगी।
इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है।
हाँ, तो यहाँ पर 13वें श्लोक में बताया है कि वो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, ओमकार का जाप करता है। ओम का अर्थ होता है, ऐसे तो ओम बीज मंत्र है, ये समाधि की अवस्था है, और वो इस तरह से भगवान का चिंतन करके योग मिश्र भक्ति के माध्यम से वो अंत में भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वैष्णव जो है वो ओम शब्द का एक दूसरा अर्थ बताते हैं। ओम शब्द से जनरली बहुत फेमस शब्द है ओम, आप कहीं पर भी जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं पर मायावती लोग भी ओम शब्द का उपयोग, मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ओम तीन चीज से बनता है, अ उ म, ओम अ उ म, तब ओम होता है, ओम नहीं है, ओम ओम इस तरह से ओम होता है। तो अ जो है वो कृष्ण के लिए है, उ जो है वो श्रीमती राधा रानी के लिए है, और म जो है वो जीवात्माओं के लिए है। तो ओम का अर्थ होता है जीवात्मा राधा कृष्ण की भक्ति में अपने आप को स्थिर करे, उसको वास्तव में ओम बोला जाता है। लेकिन ये वैष्णव समझ सकते हैं, किसी और को आप बताओगे तो वो इसको समझ ही नहीं पाएगा। इस तरह से भगवान 13वें श्लोक में अपने चिंतन को फिर से महत्व दे करके, अगेन थिंकिंग ऑफ मी इफ वन थिंक्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी, ये बताते हुए, योग का अभ्यास करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ओम का उच्चारण करता है या कृष्ण का चिंतन करता है, इस तरह से वो युग मिश्र भक्ति के माध्यम से मेरे पास आ सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर से भगवान यहाँ पर आने वाले श्लोक में 14 श्लोक जो है टेक्स्ट नंबर 14 उसमें फिर से अनन्य भक्ति का महिमा बताते हैं। पढ़िए।
हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है।
हाँ, इसमें तात्पर्य पढ़िए एक पैराग्राफ, द वर्स स्पेशल डिस्क्राइब द फाइनल डेस्टिनेशन, पढ़िए तात्पर्य।
इस लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आठ जिज्ञासु अर्थात तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। जैसा कि अनन्य चिंता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादाम्य या मोक्ष का या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चैतन्य में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या भट योगी का अपना अपना स्वाद रहता है, यही पूर्ण भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पर भी अनन्य शब्द का उपयोग हुआ है, अनन्य, फिर से अनन्य का मीन्स और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, मीन्स बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी नहीं सोचना है, फिर राहुल गांधी आएगा या नरेंद्र मोदी आएगा या फिर श्रीलंका का जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, या फिर नेक्स्ट वीक जो इनकम आने वाली है वो आएगी कि नहीं आएगी मुझे, तो ये मेरी बीमारी होकर ठीक होगी, ये कुछ भी नहीं सोचना है। नथिंग एल्स, ऑलवेज थिंक अब अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह। कितनी बार भगवान बता, देखो अनन्य चेता, अनन्य चेता कहते और किसी को नहीं, सततम, सततम का अर्थ होता है ऑलवेज, और बाद में फिर नित्य सह, यो माम स्मरति नित्य सह, रिपीटेडली भगवान इस चीज को एम्फसाइज कर रहे। पहले स्मरण के विषय में बताया, अनन्य गामिन शब्द से बताया कि वो निरंतर मेरा चिंतन कर, तो यहाँ पर भगवान अपने चिंतन पर बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही पांचवें श्लोक में बोला था कि अंध काले जो माम है वो स्मरण मुक्तवा, तो भगवान अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब मैंने बताया कि स्मरण मुक्तवा, स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करना है, तो ये स्मरण करना कितना महत्वपूर्ण है, इसको बार 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 भगवान याद दोहरा रहे। तो अनन्य चेता सतत, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, कब तक करता है,
जब तक कलेवरम छोड़ बेटा हमेशा,
जब तक शरीर में रहेगा तब तक, एंटायर लाइफ, ऐसा नहीं होता है मायावादियों की तरह पंचोपासना जैसा। मायावादी लोग क्या करते हैं, पंचोपासना होती है, वो लोग एक सीढ़ी रखते हैं, ऐसा उदाहरण प्रभुपाद देते थे, ऊपर चढ़ जाते हैं, समझ लो कि आप, आपके घर पे पर जाना है, ऊपर जाने के लिए आपको कोई सुविधा नहीं है तो सीढ़ी रखनी पड़ती है, तो आप सीढ़ी रखते हो, सीढ़ी रख के फिर ऊपर चढ़ के सीढ़ी को लात मार दो तो क्या होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, पंचोपासना का उपयोग करते, पांच उपासना जिसमें ना विष्णु होते हैं, शिव जी, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये पांच का पूजा करते हैं लोग पंचोपासना, और इसकी पूजा तब तक ही करना है जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता, वो सिद्ध, बाद में इन सब का त्याग कर देना, ये सब बकवास है, इस प्रकार के लोग होते हैं पंचोपासना।
गणेश, दुर्गा मैया और कौन-कौन,
सूर्य और कृष्ण और विष्णु, ये पंचोपासना नाम है, इसको पंचोपासना बोलते हैं। तो ये सारे जो भगवान कहते हैं कि वो निरंतर मेरा चिंतन करने वाला व्यक्ति ही मेरे पास आता है। अनंत जी का सतत यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हो जाता हूँ। एक्चुअली मैं सुलभ हूं नहीं तो भगवान इसको यहाँ पर मेंशन क्यों करते, तस्याहम सुलभ मेंशन क्यों करते, मेंशन क्या, इसका अर्थ ये होता है कि वो सुलभ है नहीं,
अनन्य चेता वाले के लिए सुलभ,
हाँ उसके लिए सुलभ, बाकी तो कंडीशन आ गई ऊपर, उसके लिए ही सुलभ है, लेकिन किसी के लिए और किसी को मिलते ही नहीं है। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम, हजारों हजारों लाखों साल तक ऋषि मुनि चिंतन करते रहे फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते भगवान को, योगी प्राप्त नहीं कर पाते, ज्ञानी के तो बात ही छोड़ो, कर्म तो सोचना ही बेकार है। तो ऐसे व्यक्ति जो निरंतर भगवान के चरणों में अपने अनडिविएटेड अनडिवाइडेड का अर्थ होता है भुक्ति की इच्छा भी नहीं और मुक्ति की इच्छा भी नहीं, अनन्य चेता। अब भुक्ति और मुक्ति हम कहेंगे प्रभु जी हम लोग कहाँ भुक्ति मुक्ति में फंसे, हम लोग हमारे हृदय में थोड़ी भुक्ति मुक्ति है, हम तो जानते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम तो भक्ति योग ही स्वीकार करते, ये भुक्ति मुक्ति के चक्कर में हम नहीं फंसते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी भी कृष्ण भक्ति में भुक्ति मुक्ति के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाए। भुक्ति किसे कहते हैं? भौतिक इच्छा को। तो क्या हम सब पूर्ण रूप से अभी भी भौतिक इच्छा से मुक्त हुए? नहीं हो पाए। नहीं, अगर कोई कह भी दे कि मैं थोड़ा बहुत मुक्त हुआ हूं, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त होना
है
शुद्ध भक्ति, अनन्य अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म जनावृतम, ज्ञान और कर्म से मुक्त होना चाहिए। कर्म का अर्थ होता है भुक्ति, भौतिक इच्छा। जब तक भोग की इच्छा है तब तक अनन्य गामिना या अनन्य चेता कैसे हुआ? और मुक्ति की इच्छा, कई लोग मुक्ति की इच्छा करते, मुक्ति की इच्छा का क्या अर्थ होता है? बस बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु आप मुक्त कर दो, इस संसार में बस इस संसार में मुझे नहीं रहना है, अब मुझे अपने अपने धाम में ले लो। कई बार भक्त लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी बुरी बात है, अगर हम इस भौतिक संसार से त्रस्त आ गए हैं परेशान है तो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, उनके धाम में जाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन ये जो इच्छा है ना मुक्त होने की, ये इच्छा अनन्य चेता नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध भक्ति का लक्षण है मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवता भक्त, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण। मुक्ति लाभ करके क्या फायदा, क्या करोगे आप मुक्ति लाभ करके? कृष्ण का सेवा करोगे राइट, तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी तो कृष्ण का सेवा ही करना चाहते हो ना आप, वही तो कर रहे हो। तो मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको गोलोक में जाकर के प्राप्त होती है, आप यहीं पर रहते हुए चेतना, प्रभुपाद एक एग्जांपल दिया था कि मैं वृंदावन में रहने वाला हूँ लेकिन मैं न्यूयॉर्क में आया हूँ, लेकिन मेरा चेतना हमेशा वृंदावन में रहता है, तो मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। यद्यपि मैं अभी न्यूयॉर्क में आपके सामने इस अपार्टमेंट में रहता हूँ और इधर लेक्चर देता हूँ 26 सेकंड एवेन्यू, लेकिन मैं हूँ वृंदावन से और मेरा चिंतन हमेशा वृंदावन में रहता है। मैं जब पढ़ा था अभी व्यवस्थित थे कि इतना मटेरियल से ये 26 सेकंड एवेन्यू फुल ऑफ मटेरियलिज्म, डाउनटाउन बॉडी स्ट्रीट पावा फुल मटेरियल, इतना झाक झमाक पूरा रजोगुण तमोगुण का पूरा हेडक्वार्टर, और वहां पर रहते हुए प्रभुपाद इज थिंकिंग ऑफ वृंदावन और निरंतर वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, जैसे आई एम वृंदावन। एक बार एक व्यक्ति आई थिंक प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे या वो एक डिवोटी थे, तो उसने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा न्यू वृंदावन में अमेरिका में, तो प्रभुपाद को प्रश्न पूछा, प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद यहाँ में न्यू वृंदावन में और गोलोक वृंदावन में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया गोलोक वृंदावन में और न्यू वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन अमेरिका में है। प्रभुपाद ने उनको कहा सो भगवान का जो निरंतर नित्य सह एंटायर लाइफ इज थिंकिंग, एक दूसरे का एग्जांपल भी प्रभुपाद ने बताया था, प्रभुपाद से कि निरंतर कृष्ण का चिंतन करो, माला का जप करो, माला का जप आपकी जो संख्या है वो करो, उस संख्या के बाद समय बचता है ग्रंथों को पढ़ो या कथा सुनो, कभी भूख लग गई थोड़ा प्रसाद खा लो, थक गए हो शरीर काम कर थक गया है थोड़ा सा झपकी ले लो, थोड़ा सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर कथा करो, फिर हरिनाम करो, इस तरह से निरंतर कृष्ण का चिंतन करो। प्रभुपाद सेड लाइक दिस, और कब तक प्रतीक्षा करनी है? जब तक ये शरीर समाप्त ना हो जाए तब तक आपको प्रतीक्षा करनी। बस इस तरह से कृष्ण चिंतन में हमेशा अपने समय को व्यतीत करो। वाई टू थिंक ऑल द नॉनसेंस अराउंड। निरंतर कृष्ण, दो प्रकार के भक्ति होते हैं ना, एक वैधी भक्ति होती है, एक रागानु का भक्ति होती है, उसकी बात भक्ति साथ में करेंगे हम। वैधी भक्ति में क्या होता है कि यही जो लक्षण अनन्य चेता योमां स्मृति नित्यश जो है वो निरंतर हमें भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है आज, इसलिए वैधी भक्ति के माध्यम से हम भगवान का चिंतन करते हैं। 4:30 बजे उठना, 16 माला का जप करना, अनंत को पढ़ना। कोई कह यशोदा माता तो कोई 16 माला जप नहीं करते थे, आप लोग हमें क्यों कह रहे हो? लेकिन यशोदा माता राग भक्ति में स्थिर थे, स्पॉन्टेनियस, उनको ये नियमों का अधीन नहीं है, नियमों का पालन करें। वो उठते बैठते सोते जागते आंखें बंद करते कभी भी निरंतर कृष्ण का चिंतन करते। यशोदा जब वो दामोदर लीला में सुबह सुबह मक्खन बनाने के लिए बैठे थे तो मंगला आरती हो रही थी, उनके कंगन से करताल बज रहे थे, वो जो मटका था जिसमें घुर घुर आवाज आ रही थी वो मृदंग की आवाज आ रही थी उसमें से, और वो खुद गाना गा रहे थे कृष्ण के लीलाओं के, तो जैसे मंगला आरती वहां हो रही हो। तो इस तरह से निरंतर कृष्ण का चिंतन करना, ये ऐसा व्यक्ति करने वाला, ऐसा चिंतन करने वाला, उसके लिए भगवान सुलभ हो जाता है। जस्ट इमेजिन, भगवान ने अभी कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले भगवान ने बताया था, आपने सुना होगा कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसको मैं उस भाव से प्रत्युत्तर करता हूँ। कुछ थोड़ी देर पहले बोला था ना, 7वें अध्याय में कब? हाँ वही, हाँ ये सब वहां पर बोलते थे। तो जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसको मैं उस भाव से प्रत्युत्तर, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, नित्य से भगवान का चिंतन करता है, तो नियम के अनुसार ये तमाम प्रपद्य थे ताँ सहयोग बजाएंगे। आप सोचो जो नित्य से भगवान का चिंतन करता है
चिंतन करना पड़ता होगा,
तो वो भी उनको चिंतन करता है, वही उनका नित्य चिंतन करता है। अभी जिसका कृष्ण नित्य चिंतन करते हो उस व्यक्ति को किस चीज की कमी हो सकती है?
तो अच्छी बात नहीं है।
हाँ
ये तो अच्छी बात नहीं है कि भगवान चिंता करे, चिंतन
भगवान चिंतन भगवान को चिंतन करने के लिए भक्त नहीं कहता, लेकिन भगवान का यह स्वभाव है कि जो जिस भाव से आते हैं उसको, जैसे हनुमान निरंतर राम का चिंतन करते थे, तो राम कभी भी हनुमान को भूल ही नहीं पाते थे, कभी भी हनुमान को भूल ही नहीं सकते थे राम, यही स्वभाव है भक्तों का। इसलिए भगवान को और भगवान को अपनी लाइफ में और कोई बिजनेस है ही नहीं, उनका एक ही धंधा है भगवान का, भगवान के अपने भक्तों का चिंतन करो, अपने भक्तों से व्यवहार करो और अपने भक्तों को सेवा करो, यही काम है उनका, और कुछ काम है नहीं।
इसलिए नहीं है काम ना, खरीदने वाले वही है, बेचने वाले वही, एडवर्टाइजिंग भी वही है, प्रोड्यूसर वही है, लेबर भी वही है, लेबर भी वही है, मेटीरियल भी वही है, सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है।
इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ इतना जुड़े हुए हैं कि उनको भक्तों को छोड़कर कुछ और सोचता ही नहीं है। His whole mind is always absorbed in thoughts of devotees। ऐसे भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं हमेशा, जहां पर भी वो भक्त जाते हैं वहां उसको सबको भगवान की उपस्थिति का भास होता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। So, ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त माना जाता है। एक गोपाल गुरु का एग्जाम्पल सुना आपने? गोपाल गुरु एक व्यक्ति था चैतन्य महाप्रभु के समय पर, तो उस समय एक व्यक्ति था वो अपनी जीवा पकड़ करके सुबह सुबह खेत में जा रहा था, ऐसे जीवा पकड़ कर। तो गोपाल गुरु करके एक लड़का था, बच्चा था, 8-10 साल का लड़का होगा, तो लड़के ने उसको कहा भाई क्या कर रहे हो, ये जीवा पकड़ करके खेत की ओर क्यों जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो बोले मैं शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ खेत में। तो बोले ठीक है शौच क्रिया के लिए जाओ, लेकिन जीव पकड़ करके क्यों जा रहे हो, जीवा पकड़ के शौच क्रिया करने का क्या महत्व है? तो उसने कहा कि मैं निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूँ, लेकिन शौच क्रिया कि समय पे मैं भगवान का नाम कैसे उच्चारण करूं, इसलिए मैंने मेरी जीवा को पकड़ लिया है कि मैं भगवान का उच्चारण ना करूं, नाम का उच्चारण ना करूं, इसलिए मैंने जीवा को पकड़ लिया है। तो गोपाल गोपाल करके जो लड़का था वो गोपाल ने कहा कि तो इसका अर्थ है कि तुम कृष्ण को ठीक से समझे नहीं हो, तुम निरंतर कृष्ण का नाम लेते हो तो क्या कृष्ण तुम्हारे शौच क्रिया से पवित्र हो जाते हैं? शौच क्रिया के समय पर भी कृष्ण का चिंतन करने में कोई अपराध नहीं होता है, इसमें कोई अपराध नहीं है। कृष्ण को उतने समय के लिए भी भूलना कैसे हो सकता है, ये कितना बड़ा नुकसान है। कल एक लेक्चर में बता रहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान है ना लाइफ का, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो कृष्ण को भूलना, इससे बड़ा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता लाइफ में, भगवान को भूल जाना। दैट इज द बिगेस्ट लॉस वी कैन हैव इन आवर लाइफ। और इस नुकसान को बहुत जोर शोर से जो भुलाने में, भगवान को आप भुलाने में जो सहायता करता है वो है काम। ये काम आपको कृष्ण को भुलाने में इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है कि ऐसा कार्य और कोई कर ही नहीं सकता। आपको भुलाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ है उसका, और इसका परिणाम यह कि हम एक मिनट कृष्ण को भूलने से कितना बड़ा लॉस होता है इसका हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम अभी पूरा चिंतन नहीं कर पा रहे, नित्य शनि करते चिंतन। लेकिन जब भगवान के भक्त शुद्ध बन जाते हैं सब प्रकार की इच्छाओं से, तब वो किसी को देखते हैं तो तुरंत उनको होता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग, भगवान को भूल करना, तो फॉरगेट कृष्ण, सच अ बिग लॉस वन कैन हैव। तो गोपाल गुरु ने जब ऐसी बात बताई तो चैतन्य महाप्रभु को ये पता पड़ा कि वो थोड़ी क्षण के लिए भी भगवान को भूलने का मना किया, शौच क्रिया के लिए भी नहीं, समझ लो उसी समय आपकी मृत्यु आ गई तो क्या करोगे आप। जैसे महाप्रभु सुना, महाप्रभु उसको प्रेज किया, महाप्रभु है वो ये गोपाल लड़का जो है आज का उसका नाम होगा गोपाल गुरु, बोले लड़का है लेकिन सबके गुरु बनने के योग्य है, सो आई गिव हिम द नेम गोपाल गुरु, सो ही बिकेम गोपाल गुरु लेटर ऑन। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। सो नेक्स्ट पंद्रह और सोलह में शुद्ध भक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाले रिजल्ट की भगवान चर्चा करते हैं।
मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है।
यस दे डोंट कम टू दिस प्लैनेट्स। मुझे मामोपेत्य पुनर्जन्म वही है क्या, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, वो इस लोक में नहीं आती फिर से, मामोपेत्य मुझे प्राप्त करने के पश्चात क्यों आएंगे इधर, जब उनको प्राप्त हो जाए शुद्ध। यहाँ पर कोई सुख है ही नहीं। दुखालयम, दुखालयम का अर्थ होता है जहां पर दुख मिलता हो, वेर यू गेट मिजरी, उसको आलय, आलय जहां कोई लगता है, औषधालय, भोजनालय, पुस्तकालय, फिर ऐसे कितने बहुत सारे आलय होते हैं, राइट। तो ये सारे जो आलय है वो सारे आलय का अर्थ होता है जो स्थान जहां से प्राप्त होता है। तो दुखालय, दुखालय का अर्थ होता है यहाँ पर केवल कष्ट है। यहाँ का नियम क्या है, संसार का नियम यह है, बहुत सिंपल नियम है, गारंटेड नियम है, जो चीज आपको नहीं पसंद वो आपको प्राप्त होगी, और जो चीज आपको पसंद है वो आपसे छीन लिया जाएगा। ये यहाँ का नियम है संसार का, दिस इज द यू नो हार्ड रूल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और दूसरा रूल क्या है कि संसार में दुखालय में, कि जब तक आप यहां पर सुखी होने का प्रयास करोगे, जितना प्रयास करोगे उतना दुख मिलेगा, जब तक आप प्रयास करोगे तब तक दुख मिलता रहेगा। जिस दिन आप सुखी होने का प्रयास छोड़ दोगे तब से सुख की शुरुआत हो जाएगी, तब आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। सुखी होने का प्रयास करना छोड़ दो देन यू विल बिकम हैप्पी, तब आप सुखी हो पाएंगे। कोई कहेगा कि मैं दुखाल है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। कोई है ना, एक व्यक्ति था, बोले ज्योतिष के पास, बोले क्या लिखा है, बोले बाप रे बाप 25 साल तक तो तुम्हारे साढ़ा साथी है, ये है वो है, इतना सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है कि पूछो ही मत। ओ बाप रे बाप, ऐसा है मेरी लाइफ में, आगे बढ़ो, आगे क्या है, 25 साल के बाद क्या है। तो बोले 25 साल के बाद तुम्हें हैबिट हो जाएगी, नो नीड टू वरी। तो हमारे लाइफ में ऐसा हो गया है, हैबिट हो गई है दुखालय। अगर कोई सोचता है कि कोई बात नहीं दुखालय में, मैं मेरे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, गर्मी का मौसम होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो मैं एसी 4 एसी लगा दूंगा एक ही कमरे में, हाँ तो मैं ठंडी का मौसम बना दूंगा, सारी सुविधा है, सब कुछ बना दूंगा, लेकिन सॉरी सर यू कैन नॉट डू दिस। क्यों? अशाश्वतम, अशाश्वतम। आप इतना सब दुखालय तो है लेकिन उसके ऊपर अशाश्वतम भी है, वो रहेगा नहीं, परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है, वो जो आता है चला जाता है। कोई कितना भी मेहनत करके प्रयास भी करेगा सुखी होने के लिए, सब फेल हो जाता है, सब फेल। बहुत मेहनत करके पूरा साम्राज्य इकट्ठा करेगा लेकिन फिर मर जाएगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ मनी। माम पिता पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम ना पुनवंती, इधर नहीं आता फिर, और इधर नहीं। नेक्स्ट लोक पे पढ़िए।
इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों को हर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता।
हाँ मामुपेत्य, मेरे पास आने वाला को फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आता है, उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है, पुनर्जन्म न विद्यते। जो इधर आता रहता है उसको कष्ट भुगतना होता। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि हम आपको एक बहुत अच्छा सुविधा करके देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि बुढ़ापे को हम विजय उसको कॉन्कर कर ले। रोग को तो हम कॉन्कर कर ही रहे, नए नए रोग आते हैं और हम उसको कॉन्कर करते जाते हैं। और जहां तक मृत्यु की बात है, कुछ साल के बाद हम मृत्यु को भी कॉन्कर कर लेंगे। एंड दे हैव ऑर्गेनाइजेशंस।
अभी मतलब एक आर्टिकल में मैसेज आया था कि आफ्टर 40 इयर्स ये मतलब इन्वेंशन हो जाएगा, फिर देयर विल बी नो डेथ।
और उसके लिए आपको अमेरिका में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लाखों डॉलर्स वहां पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट में होते हैं कि आप यहां पर लाखों रुपए का रजिस्ट्रेशन कर दो, जैसे तुम मर जाओगे हम तुम्हें फिर से जीवित कर देंगे। तो इसके लिए तुम अभी रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, तुम मरने के बाद तुम्हें जीवित करने का काम हमारा। और लोग पैसा देते हैं, अमेरिका के लोग ऐसे भी थोड़े आधे पागल ही होते हैं अधिकतर। I mean, American people are sometimes they are crazy. They can throw money for anything. तो ऐसी संस्थाएं भी है। तो प्रभुपाद यूज्ड टू से ये जो साइंटिस्ट है दे गिव यू पोस्ट डेटेड बैंक चेक। पोस्ट डेटेड बैंक चेक का क्या वैल्यू है? आप कहेंगे उसमें कितना भी अमाउंट भरो, ब्लैंक चेक है, कितना भी भर सकते हो, राइट। लेकिन पोस्ट डेटेड है। एक व्यक्ति आपको पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक दे रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको 100 रुपया दे रहा है, क्या लेना चाहिए? 100 रुपया लेना चाहिए, राइट। वो कहेगा कि आपको पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि आपको जितना अमाउंट डालना है डाल सकते हो इसके ऊपर, लेकिन वो पोस्ट डेटेड है।
100 साल के बाद
उसका क्या वैल्यू है? 100 रुपया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ काम में तो आएगा 100 रुपया, इसमें भी वो उस चेक का कुछ काम है, कोई काम में नहीं आएगा, नो वैल्यू, राइट। तो इसलिए भगवान के धाम में जाने के बाद पुनः वापिस इधर आना नहीं पड़ता। अन्यथा बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कुछ लोग अभी चंद्र पर घर बनाने का सोच रहे हैं, कुछ संस्था ऐसी है बोले आप हमें एडवांस में पैसा दे दो तो सबसे पहला घर आपका ही बनाएंगे। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं लोग अमेरिका में इस तरह से कि मंगल पर चंद्र पर तुम्हारा घर बनाएंगे और सबसे पहले तुम हकदार होंगे उसके रहने के। पीपल आर पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स बट दिस ऑल नॉनसेंस ऑल नॉनसेंस। सो मटेरियल वर्ल्ड में हम ज्यादा आसक्त रहते, जैसे भी कुछ समय पहले मैं आपको बता रहा था कि हम आध्यात्मिक विश्व का जो महिमा है पुनर्जन्म न विद्यते, वहां से पुनर्जन्म नहीं होता है लेकिन ये कैसे नहीं होता है ये हम समझ ही नहीं पाते बिकॉज इट इज इनकंसीवेबल, वी हैव नो नॉलेज कि हम ये कैसे काम करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा था कि प्रभु अगर गोलोक वृंदावन में अगर कोई जाता है और उसको मृत्यु नहीं आती है राइट, उसको टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है उधर, तो कोई व्यक्ति कंटाल नहीं जाएगा या? ऐसा प्रश्न पूछा। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई तुम उधर जाकर के चेक करके ले लेना, देख लेना आपको कंटाल आता है कि नहीं आता। आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज है वो सब अचिंत्य है, इसलिए हमें कृष्ण का जो निरंतर जो पास लीलाएं होती है वो इतनी रसमय होती है। आप छोटी सी एक हम आपको छोटी सी दामोदर लीला सुनाने में आपको इतना आनंद आ जाता है सुनने से, केवल कभी देखा नहीं लीला हमारी आंखों से कभी देखा नहीं है लीला, लेकिन केवल सुनते हैं, केवल सुनने से हमें इतना आनंद आ रहा है। तो आप सोचो कि उस लीला के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो और ऐसी निरंतर लीलाएं चलती रहते निरंतर, यू हैव नो इमेजिनेशन। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉट इन द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेंसेस राइट नाउ, ये हमारी इंद्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क में ये नहीं है, अनुभव में नहीं है, इसलिए हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमारा मन जो है वो आसक्त रहता है भौतिक चीजों के प्रति, अटैच टू मटेरियल हैप्पीनेस, इल्यूजन मोहित हो जाता है। अभी कोई भोजन के लिए मोहित होता है, कोई किसी और चीज के लिए मोहित होता है, पुरुष स्त्री के प्रति मोहित होता है, स्त्री पुरुष के प्रति मोहित होता है, लेकिन ये मोहित होने का मूल उद्देश्य यही है, मूल कारण यही है क्योंकि हमें इससे महत्वपूर्ण जो सुख है, इससे ज्यादा जो आध्यात्मिक सुख है जिसकी कोई तुलना ही नहीं इसके साथ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमारे पास नहीं है। इसलिए भगवान इस संसार के जो सुख है उसके प्रति विरक्ति उत्पन्न करने के लिए दो तीन श्लोकों का उच्चारण करते हैं कि हमें यहाँ पर इस संसार के प्रति जो मोह लगा हुआ है, आसक्ति लगी हुई है, जो हमारा मन बहुत ही ज्यादा आकर्षित है इस संसार के साथ भौतिक सुखों से, तो इसका असली स्वरूप भगवान दो तीन श्लोकों में बताते हैं वो किस तरह से टेम्पररी है। तो वो आने वाला श्लोक पढ़िए।
मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है।
हाँ, तीनों श्लोक पढ़ लीजिए कंटिन्यूस 18-19 तक।
ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं और जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय अवत विलीन हो जाते हैं।
यस, तो ब्रह्मा का जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो 311,040,000,000,000 ईयर्स, इतने ब्रह्मा जी का लाइफ है, सोच ही नहीं सकते आप, अनंत लगता है। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन कितने साल ब्रह्मा जी थे, वो ब्रह्मा जी का 100 साल हुआ। ब्रह्मा जी 14 भुवन की जो कैटेगरी उसमें सबसे ऊपर की कैटेगरी में आते, हमारे ऊपर की कैटेगरी आती स्वर्ग लोक। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की काल गणना हमारे ऊपर वाले काल गणना से अलग है। उस तरह से धीरे 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 जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे उसकी काल गणना बदलती जाएगी, कैलकुलेशन टाइम कैलकुलेशन वो बदलते जाएंगे। जैसे देवताओं का 12 घंटा होता है हमारे 6 महीने के बराबर, और जैसे हमारा पूरा एक साल बीतता है तो उनका 24 घंटा होता है देवताओं का। लेकिन ब्रह्मा जी का कैसा होता है कि 4 युग हमारे जो है सत्य त्रेता द्वापर कली ये सब मिला करके कुछ 43 लाख साल होते हैं। ये 43 लाख जितने साल है उसको 1000 बार रिपीटेड होता है, 1000 साइकिल घूमता है ये सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य त्रेता ऐसे 1000 बार घूमता है तब जाके ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। 43 लाख साल मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा, और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 12 घंटे की ब्रह्मा की रात्रि। ऐसे 365 दिन का एक साल और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी थे। लेकिन ये सारा आयुष्य 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स भगवान के लिए फ्लैश की तरह चला हुआ है। फ्लैश इज जस्ट अ फ्लैश फॉर द लॉर्ड। फ्लैश देखा है, फ्लैश कितना होता है, फ्लैश झुम करके चला है राइट, आता है तुरंत तुरंत फ्लैश, इट्स अ फ्लैश राइट। और ये फ्लैश जो है ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ भगवान के लिए फ्लैश जैसा है। जैसे आप कोई फोटोशूट होता है तो पता है आपको बहुत सारे कर 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 फ्लैश होती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे फ्लैश होती है, सो मैनी फोटो सेशन होती है तो राइट। तो जैसे फ्लैश होती है ना रिपीटेडली, उतना तेजी से ब्रह्मा जी भगवान के पास आते जाते रहते। ऐसे एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा तीसरे ब्रह्मा चौथे ब्रह्मा वन बाय वन फ्लैश इन सच फ्लैश। आप सोचिए, सो नाउ वी कैन इमेजिन व्हाट इज कृष्णस टाइम कैलकुलेशन, इज बियॉन्ड दिस। ऐसे भगवान जब सांस लेते तो सारा प्रलय हो जाता है, सांस छोड़ते तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा रोज नया क्रिएशन करते हैं डेली, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारा सर्जन को समेट लेते हैं, सारी दुकान बंद कर देते हैं फिर। और फिर रात्रि के समय पे सब सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे दिन का शुरुआत होता है तो वापिस सारा सेट करना, दुकान सजाना, ये यू नो पूरा क्रिएशन ब्रह्मा जी फिर से करते हैं। और ब्रह्मा जी क्रिएशन करने के पश्चात फिर हम सब आते हैं। आप सोचिए ये ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स इतने सालों में हजारों हजारों लाखों युग बीतते हैं, और इसमें से हमारा एक युग है, और इस एक युग में से कुछ वही 80-70 साल हम जीते हैं, 432,000 साल।
कोई भी 30-40 साल की एवरेज लाइफ डाली जाए पौधों प्राणियों में मिला के तो पता नहीं कितने से जन्म निकल
चुके। कितने जन्म आप काउंट करो, जस्ट इमेजिन। अब मोस्ट जानते हो बग्स क्या बोलते हैं उसको, वो लाइट होती है ना, तो लाइट के प्रति कुछ मॉनसून में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जन्म लेते हैं रात्रि के समय पे, दिन तक का वेट भी नहीं होता है। सुबह होने से पहले आप रात को सो जाओ और आप सुबह जगो, उसके पहले ही उसका जन्म होता है, वो स्कूल में पढ़ने जाता है, उसका शादी विवाह होता है, बच्चे उत्पन्न करता है, सुख दुख का शेयर करता है अपने परिवार के लोगों के साथ, और कभी और बहुत सारे एम्बिशन बनाता है, सब कुछ करता है, फिर वानप्रस्थ लेता है, फिर संन्यास लेता है, फिर मर जाता है। और ये सब कुछ होता है आप नींद में से उठो उसके पहले, सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह आप उठते हो तो देखते हो बहुत सारे मरे हुए पड़े, राइट, सो अभी उस एक कीड़े को जाकर के बोलो, बोले मैं तो सो गया था और मेरी लाइफ कितनी है, मैं कम से कम 60-70 साल जीता हूँ अहमदाबाद में कलयुग में, अभी कम से कम इतना 60-70 साल। अच्छा 60-70 साल कितना होता है वो अपनी बुद्धि से काउंट करेगा। मेरी पूरी लाइफ अगर 4 घंटे की है तो ऐसा आपका 24 घंटा, 6 गुना। और फिर इस तरह से फिर वो हमारे जैसे हम ब्रह्मा जी का कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो वैसे वो हमारा मनुष्य का कैलकुलेट करता है। अभी आप उसको बोलोगे कि अगर समझ लो कि आधी रात को आप उठे और वो एक रो रहा है, एक कीड़ा रो रहा है, बोले क्यों रो रहा है, बोले वो भाग गई, तो क्या लगेगा आपको? आपको लगेगा अरे मूर्ख अभी 2 घंटे में तेरा सत्यानाश होने वाला है, 1-2 घंटे के अंदर तेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, किस छोटी चीज के लिए रो रहा है तू या झगड़ा कर रहा है? इससे मैं बात नहीं करूंगा, इसको मैं हरे कृष्ण भी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? बोले इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा झगड़ा हुआ, अनबन हो गई हमारी। अरे भाई 1 घंटे के अंदर तो तेरा मृत्यु होने वाली है, विद इन आवर। तो अभी आप समझ सकते हो कि ये कितना टेम्पररी है, सो फ्लिकरिंग। हमारे लाइफ जो है 60-70 साल का, और भगवान के लिए ब्रह्मा जी का लाइफ फ्लैश है। तो हम इस छोटी सी चीज के प्रति किस कारण से आसक्त हो रहे हैं, कौन सी चीज के लिए आसक्त हो रहे हैं? आई मीन व्हाट इज द यूज ऑफ, जो आज जवान है वो एक दिन में बूढ़ा हो जाएगा। आज जो व्यक्ति जवान दिख रहा है आपको, जिसके कारण आपको आकर्षण हो रहा है उसके प्रति, क्योंकि वो जवान है, लेकिन वो जवान कब तक रहेगा? अगर देवताओं की, चलो ब्रह्मा की छोड़ो, देवताओं की तुलना में देखो तो वो जवान कब तक रहेगा? और ब्रह्मा जी के लिए तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के आप इंद्रदुम्न महाराज गए थे पता है, इंद्रदुम्न स्वामी जो जगन्नाथ भगवान का स्थापना करने के लिए, जगन्नाथ भगवान का मूर्ति बनवाया विश्वकर्मा से, विश्वासों से सब लाए, और बड़ा मूर्ति ला करके प्राण प्रतिष्ठा करवाने, पूरा मंदिर बना दिया, मूर्ति भी लगे, सब कुछ हो गया, लेकिन पृष्ठ चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जगन्नाथपुरी में। तो उनका बड़ा हृदय में ऐसी इच्छा थी कि वो ब्रह्मा जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं। अभी इंद्रदुम्न महाराज गए नारद मुनि की कृपा से ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर जैसे ही गए, प्रणाम किया, बोले क्यों आए हो? तो बोले जगन्नाथ भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना है पुरी में, उसके लिए मैं आपको आमंत्रण करना है। तो ब्रह्मा जी बोले तो तुम्हारी पत्नी भी मर गई, तुम्हारे राजा भी बदल गए, युग भी बदल गया वहां पर, यहाँ पर एक एक सेकंड, वहां पर एक एक युग बीत रहा है। जैसे ब्रह्मा जी का विमोहन किया था ना बच्चों का, कृष्ण ने, कृष्ण के मित्रों का ब्रह्मा जी ने चुराया था 1 सेकंड के लिए ब्रह्मा जी का, और यहाँ पर पूरा 1 साल बीत गया था 1 सेकंड में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहीं कहीं युग बीत गए, तुम इधर इतना देर तक बैठा है, अभी बुद्ध तो तुम्हें कोई पहचाने का भी नहीं। तो इंद्रदुम्न महाराज बोले अब क्या करूं, लेकिन अब तो आ गया इधर, अब मैं आया हूं, इतना सब कुछ त्याग हो गया, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, तो कम से कम मेरी विनती स्वीकार करके जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा करने के लिए तो आओ। तो जब ब्रह्मा जी उधर नीचे आए इंद्रदुम्न महाराज को लेकर के, तो वहां पर तो कोई और ही राजा था, गल माधव करके कोई और ही राजा था, और वो मंदिर जो था उस पर वो अपना अधिकार बता रहा था। तो पहले ब्रह्मा जी ने कहा अपना झगड़ा आपस में सॉल्व करो पहले, फिर मैं प्रतिष्ठा करता हूँ। बाद में काकभूषण जी ने, वहां पर था काकभूषण जी, इतने युगों तक जीवित था। जनरली कौवे जो होते हैं, कौवे अपनी मौत नहीं मरते, कौवे तभी मरते जब उसको कोई मारता है, कौवे की अपनी मौत नहीं होती है। जनरली कौवे लोग दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही मरे जाते हैं, अन्यथा कौवे मरते नहीं। इसलिए कौवा एक ऐसा पक्षी है कि वो युगो युगो तक जीवित रह सकता है अगर कोई उसको मारेगा नहीं तो। तो ये भूषणडी करके जो कौवा था, काकभूषणडी, उसको वो वहीं पर जगन्नाथ मंदिर के पास में रहता था अभी उतने सालों पहले, तो इंद्रदुम्न महाराज के सामने, तो अभी भी जीवित था। उसने कहा कि मैं साक्षी हूं कि ये मूर्ति इंद्रदुम्न महाराज ने बनाई है और ये मंदिर भी उन्होंने बनाया। तब फिर गल माधव मान गए और फिर ब्रह्मा जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जगन्नाथ भगवान की। तो ये काल गणना भगवान ने तीन श्लोक में, कई बार कुछ लोग पूछते हैं क्या है, क्या बताने की आवश्यकता है ये कि कितने इतना ब्रह्मा जी का लाइफ स्पान। ये इसलिए बताया जाता है कि ना देन यू कैन अंडरस्टैंड द टेम्पररी नेचर ऑफ द मटेरियल बॉडी। टेम्पररी नेचर कुछ हम छोटी छोटी बात को लेकर के इतना विचलित हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी बात का अपना क्या मूल्य है, इतने विशाल समय में इसमें फंसना। इससे अच्छा है कि कृष्ण के धाम में नित्य लीला जो होती है उसमें रहना, वो ज्यादा अच्छा है। सो दिस इज टू हमारे जो वैराग्य है उसको उजागर करने के लिए ये श्लोकों का उच्चारण किया गया है। हाँ पूछे,
ये देवता लोग 1000 शतक तक ही जिंदा रहते हैं जो इंद्रादि देवता हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन भर के लिए जिंदा रहते हैं?
नहीं, नियम के अनुसार सबका 100 साल का आयुष्य होता है,
पर ब्रह्मा जी के एक दिन में देवता लोग तो
दिन भर, उनका भी प्रलय होता है ना,
वो तो 1000 चतुर्युग के दौरान ही रहते
हैं? नहीं नहीं नहीं, उनका जैसे मल्टीपल प्रलय होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत सारे प्रलय होते हैं, जैसा भी कल और इस समय फैनी आने वाला है, राइट, 200 की स्पीड से ऐसा सुनने में आया। तो ये साइक्लोन में ऐसा अंदाज लगा सकते हो कि अगर व्यवस्था सही नहीं है तो 1000 लोग मर जाएंगे, या 200-500 लोग मर जाएंगे, या पता नहीं कितने लोग मरेंगे, राइट। श्रीलंका में अभी हुआ तो उसमें 300 लोग मरे, 300 लोग मर गए, राइट। तो दीज आर बेबी प्रलय, ये बेबी प्रलय है ये सारे, जिसमें एक साथ कई लोग मर जाते, लेकिन ऐसे प्रलय सभी लेवल के होते हैं। पृथ्वी का अपना एक प्रलय होता है, फिर स्वर्ग का एक अपना प्रलय होता है, फिर स्वर्ग के ऊपर के लोग का अपना प्रलय होता है, लेकिन जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब ब्रह्मलोक के अलावा सब कुछ प्रलय है, ब्रह्मलोक को छोड़ करके सब कुछ प्रलय हो जाता है, वो बड़ा प्रलय होता है। लेकिन जब ब्रह्मा का लाइफ खत्म होता है 100 साल, तब फिर ब्रह्मलोक को भी प्रलय में ले लिया जाता है, फिर कुछ नहीं रहता, वो वहां लास्ट, उससे ब्रह्मा जी भी नहीं बच सकते। जब जब भी प्रलय होता है तब तक सारे लोग अपने नीचे वाले प्रलय को देख करके भयभीत होते हैं। पृथ्वी लोक पर प्रलय आता है तो स्वर्गादि जो इन देवता लोग हैं वो भयभीत होते हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पर प्रलय नहीं आने वाला है, उनको लगता है कि शायद ये प्रलय अब ऊपर आ जाएगा और ये हमारा नाश कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, उनका नाश प्रॉपर समय पे होता है। सो प्रलय मीन्स डिस्ट्रक्शन, एंड डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज फियरफुल, हमेशा भय उत्पन्न करने वाला होता है। सो इट इज ऑलरेडी 10, we have completed only 19 shloka, I mean today we have completed like 15 shlokas, so I should stop because there are 9 more shlokas to go. Main soch raha tha ki khatam karu, lekin kam se kam isme 15-20 minute to minimum lagega, so I can stop.